Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ और पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
आप दोनों को भी नमस्कार, गुड इवनिंग।
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार।
The headlines: Government receives investment application worth over 1,15,000 crore rupees under electronics component manufacturing scheme. Major Asian markets close in the positive zone and global crude oil prices fall around 0.5%.
Electronic component विनिर्माण योजना के अंतर्गत सरकार को 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश आवेदन प्राप्त हुए। एशिया के प्रमुख बाजार आज तेजी के साथ बंद हुए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत लगभग 0.5% घटी।
The views and opinions expressed by the experts on this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
Now we move on to the main stories and we begin with the Union Minister for Electronics and IT, Ashwini Vaishnaw, today said that under Electronics Component Manufacturing Scheme, ECMS, the government has received investment applications worth 1,15,351 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Union Minister informed that the date of application under the scheme was closed yesterday and the number of applications received under it is historic.
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है और जो पिछले 11 वर्षों में जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है दुनिया भर का भारत पर, ये ट्रस्ट इट्स रिजल्टिंग इनटू इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्शन अगेंस्ट अ टारगेट विच वॉज अगेन अ वेरी एम्बिशियस टारगेट वी हैव टेकन ऑफ 59,350 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट। वी हैव रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,15,351 करोड़ अगेंस्ट अ प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 4,56,500 crore, 4.5 lakh crore. We have received production estimates more than 10 lakh crore, 10,34,000 crore. So that is more than double what we had targeted.
This scheme was approved by the cabinet on the 1st of May 2025 with a fiscal outlay of 22,919 crore rupees to make India self-reliant in electronic supply chain. It is projected to create 1,42,000 direct jobs as well as the target of 91,600 and a manifold number of indirect jobs, demonstrating its potential to drive large-scale employment. Siddharth, talking of electronics component manufacturing scheme, which was launched on the 1st of May 2025, of course, if we look at the numbers, it will be creating that much, 1,42,000 direct employment. Now, these things apart, how important it is when we look at giving the push to an Atmanirbhar and Viksit Bharat.
Yes, Nishit, very rightly said. I think the aim of the scheme is to make us self-reliant. And I think that, as I would rightly put it, as a low-hanging fruit. So electronic manufacturing was seen as a low-hanging fruit, and which Government of India recognized, I think, when very early in 2014, when this government came and a wide canvas was envisaged, and it was decided that we will give a push to manufacturing, and electronic manufacturing was one of the prime areas or the focus areas. And if you look at the results, I think post 2016, we had, if I would mention a big name in terms of electronic manufacturing, and which is now India's, which is world's hub, manufacturing hub, would be iPhones, which are being manufactured in India, and they are being exported even to the United States. And we all, as we all, if you would recall that even Mr. Donald Trump had an objection. He told the iPhone people that you should take away your manufacturing base from India and bring it back to US, and shouldn't be exporting iPhones made in India to USA. So I think in that terms, and the results are already showing. And as you see in the today, if we look at the scheme, the way it was envisaged, that investment of 59,000 Korean was envisaged, and against that we have already got proposals for about over a lakh crore. And in terms of and the most important point I think I would like to highlight here would also be that the push this government has from day one been giving to medium and small enterprises, MSMEs.
Yes.
So, and here if you look at the all the proposals that have come in, I think 60% of them comprise or are from the medium and small scale industries. So, which is also again very heartening that the focus the government which has been giving to these MSME small enterprises is also yielding results. So, I think it's a step in the right direction, and I think probably from here, obviously, we will also expand. And these schemes are also productivity linked, plus also very high employment generating.
Yeah, Siddharth, very rightly you said. And when you talk about the MSMEs, if we look at the MPC outcome yesterday by the RBI, it has given a lot of push to the MSMEs when it comes to financing, credit flow and all.
Siddharth ji, yahan par ek aam layman shrota ke nazariye se hum samajhna chahenge ki mahatvakankshi yojana hai, isme koi sandeh nahi, bade paimane par logon ko rozgar bhi milega, isme bhi koi sandeh nahi, lekin ye jo electronic component vinirman yojana hai, ise pratyaksh roop mein ek aam shrota kya samjhe ki kahan kahan kya banega, television ke liye nirman hoga, ghadiyon ke liye nirman hoga, kis kshetra mein hoga aur usse kya aam upbhokta ko seedha kehle nazar ho aayega.
देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में अगर मैं एक आपको जैसे अभी उदाहरण भी दिया मैंने मनोज जी, जैसे कि मोबाइल फोन्स के कवर, उसमें लगने वाले और छोटे जो डिवाइसेज हैं वो, उसी तरह से आपको कंप्यूटर का, जैसे जो कंप्यूटर बनाने में जो चाहे उसका ऊपर का जो
एक्सेसरीज
है, माउस है, और जो हम लोग यूज़ करते हैं जिस तरह से कंप्यूटर्स में नॉर्मल कीबोर्ड है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के तरह तरह के कंपोनेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, ये जो चेन है ये बहुत बड़ी है. और उसका एक बड़ा उदाहरण जो मैंने कहा, और इस मैं कई बार ये बात कह भी चुका हूँ, जैसे जो मैंने नाम लिया अभी, इसी कंपनी का भारत सरकार को 2016 में एक प्रपोजल था कि आप हमको बहुत बड़ा टैक्स इंसेंटिव दें तभी हम हिंदुस्तान में आएंगे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. लेकिन चूंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में आप देखेंगे अभी लोकली हमारी जो मोबाइल कंपनीज हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े लेवल पे कर रही है, ना केवल हिंदुस्तानी कंपनी है, बाहर की भी विदेशी कंपनीज हैं जो चीन से भी आए के चीनी कंपनियां भी, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग लोकल कर रही है, मेक इन इंडिया जो हमारा पुश है. तो उसके तहत हमने फोर्स किया कि आप भी आइए, अगर आपको इंसेंटिव चाहिए तो पहले आप अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस हिंदुस्तान में लगाइए. और उसी का नतीजा है कि आज तकरीबन मोबाइल एक्सपोर्ट्स में इंडिया बहुत आगे है. तो वो एक जो आपने सवाल पूछा उसका, और इसका एक और फायदा ये है कि देखिए ये जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में नहीं, ज़्यादातर जो फोकस है वो एमएसएमई छोटी इंडस्ट्रीज जो है उनमें ये काम हो रहा है. तो उससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़े तादाद पे जनरेट हो रहा है. तो ये, और इसके लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव भी है, सरकार भी इंसेंटिवाइज कर रही है, अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपको इतना इंसेंटिवाइज भी करेंगे. तो इसके वजह से मुझे लगता है कि ये प्रोग्रेस हमको दिख रही है, और इतना लोगों का जो रुझान है, जो इस तरह के जो हमारे पर जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आ रहे हैं, उसके पीछे वही कारण है कि एक तो कंड्यूसिव एटमोसफियर हमने बना के दिया है, और दूसरा चूंकि यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है.
घरेलू शेयर बाजार आज सार्वजनिक अवकाश के उपलक्ष्य में बंद रहे. महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और विजयादशमी के उपलक्ष्य में भारतीय शेयर बाजार, प्रतिभूति लेनदेन, कमोडिटी मार्केट और मुद्रा बाजार भी बंद रहे. घरेलू शेयर बाजार में पिछले कई सत्रों में लगातार बिकवाली के बाद नीतिगत फैसलों का सकारात्मक संकेत निवेशकों ने लिया और कल अच्छी खासी खरीदारी की. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 716 अंक बढ़कर 80,983 पर बंद हुआ था, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 225 अंक बढ़त के साथ 24,836 दर्ज हुआ। सिद्धार्थ जी, बाजार लंबा हमने क्रम देखा लगातार नीचे आने का, अब माने के उत्साह के मूड में या कहने त्योहारी उत्सव में शेयर बाजार बढ़ता दिख रहा है आपको?
नहीं मनोज जी, मुझे लगता है सरकार की तरफ से बहुत सकारात्मक कदम उठाए गए, जैसे जिसमें से सबसे बड़ा था जो जीएसटी का जो बड़ा कट आया, दो स्लैब्स बनाए गए और उसमें जो उसके प्रोसेसेस हैं उसको भी आसान किया गया और वो दिख भी रहा है, एक हम लोगों को दिख रहा है, एक उत्साह दिख रहा है लोगों में, बाजार में दिख रहा है, जो जिस तरह से खासकर अगर मैं कहूं कि जो बड़े आंकड़े आ रहे हैं जैसे कि कारों की बिक्री हो और जीएसटी का भी डेटा अगर आप देखें, केवल सेप्टेम्बर का भी डेटा देखेंगे तो इतना खराब नहीं है, जबकि ये था कि चूंकि 22 सेप्टेम्बर के बाद ही ये सब जो सहूलियतें हैं उनको इम्प्लीमेंट होना था जो जीएसटी कट हुआ है। लेकिन जो बात आपने कही कि उत्साह, ये कहना अभी थोड़ा मुझे लगता है जल्दबाजी होगा। हाँ, कल बाजार में तेजी थी क्योंकि फिर हमको आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में मतलब रेट्स को तो जो है स्टेटस को रखा, जो रेट रेपो रेट था उसमें कोई कमी नहीं की उस दर में, लेकिन जो उन्होंने और सहूलियतें जो खासकर बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई, और जैसा अभी हम लोग कार्यक्रम के पहले निश्चित बात कर रहे थे, तकरीबन 22 बड़े अनाउंसमेंट्स उन्होंने किए जिससे कि क्रेडिट का फ्लो कैसे बढ़ाया जाए हमारी इंडस्ट्री को, कॉर्पोरेट्स को, तो वो एक उसकी वजह से मुझे लगता है कल एक बाजार में जो हमने तेजी देखी, एक इमीडिएट रीजन, बट मुझे लगता है अभी आने वाले टाइम में जो अनसर्टेनिटी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जो बिनी हेडविंड्स हैं, जो वो मुझे लगता है अभी भी कहीं ना कहीं भारी है, और अभी भी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स अभी तक जो आई कॉर्पोरेट अर्निंग्स, वो भी मुझे लगता है कहीं उनमें भी अभी सिंगल डिजिट कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, तो लोगों में अभी भी उतना विश्वास नहीं है। साथ ही साथ इसके अलावा अभी भी एफआईआईज ने हिंदुस्तान की बाजार के रुख नहीं किया है, अगर केवल इस साल में आप देखेंगे तो तकरीबन 2,00,000 करोड़ उन्होंने निकाला है हमारी बाजार से, लेकिन हाँ बाजार अभी भी जो है, जो हमारी बाजार में एक स्टेबिलिटी है उसका बड़ा कारण डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने तकरीबन 5,00,000 करोड़ इस साल निवेश किया है हमारी मार्केट, तो हमारी डिपेंडेंस तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं ये अनसर्टेनिटीज हैं, और उसके सबसे ऊपर जो मुझे लगता है जो टैरिफ को लेके अनसर्टेनिटी, ट्रंप साहब का रोज कोई ना कोई, न केवल टैरिफ उन्होंने हमारे पर 50% लगाया, अब उन्होंने उसमें फार्मास्यूटिकल जोड़ दिया, उसके साथ जो रोज ना रोज कोई नया अनाउंसमेंट आ रहा है। हाँ, एक अच्छी बात यह है या आशा की करण हम कह सकते हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं बातचीत हमारी दोबारा उनसे ट्रेड के ऊपर जो हमारे टैरिफ हैं उनको लेके दोबारा बातचीत शुरू हुई, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर वहां गए थे, और इसके बाद अब ये देखना है कि उसका नतीजा क्या आता है, लेकिन मुझे लगता है इन सब चीजों का एक प्रभाव बाजार पे रहेगा। और अगर आप आरबीआई की पॉलिसी में भी देखेंगे तो जो सितंबर तिमाही तक का तो जो जीडीपी का जो इन्होंने एस्टिमेट किया वो थोड़ा उसमें जो है उसको ऊपर किया है, हाँ बढ़ोतरी की है तकरीबन 7% तक, लेकिन अगर आप Q3 मतलब अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च का जो दो तिमाही है उसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना डाउनवर्ड रिवीजन किया है जीडीपी के ग्रोथ में। तो और उन्होंने भी कल जब संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर जब अपना जो उन्होंने उद्बोधन किया उसमें ये बात बोली कि कहीं ना कहीं टैरिफ का इम्पैक्ट अभी भी वो जो है बना हुआ है, उस अनिश्चितता में कुछ भी कहना मुश्किल है। हाँ, ये जरूर उन्होंने इस बात का भरोसा दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो और भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे।
वेलकम बैक टू मार्केट मंत्रा। सिद्धार्थ, बिफोर द ब्रेक वी वर डिस्कसिंग अबाउट the growth and how the markets reacted yesterday, of course, to the MPC policy meeting outcome and a few other factors as well. And now, Sanjay Malhotra, the RBI governor, was also a bit skeptical about the coming time, especially about the Q3 and Q4 of FY26. Now, Siddharth, tell me, we are sitting pretty in a pretty safe zone. The inflation figures have also been brought down, moderated yet, cooling off. We are sitting with a pretty 700 billions of forex reserves. There are other factors, manufacturing, consumption, of course, with the GST cut, income tax relief and everything. Consumption is picking up. We are an aspirational society, all of us know. So where do you see actually the hiccups coming? Barring, of course, the Trump tariffs and H-1B visa fees and other headwinds coming from all over.
See, Nishit, what I would say, it is not the headwinds. It is not nothing to do with our domestic factors which are giving us these headwinds. These headwinds are obviously, the primary reason is obviously the geopolitical situation, obviously, and there is no end to it. We are still only seeing new issues getting added to the ongoing problems. So I think that is one. Plus Donald Trump, the uncertainty that he has given to the world and he continues to give to the world, obviously is having a huge impact on us also. And one of the impacts, obviously, that obviously in such circumstances, in such situations, nobody wants to come and invest. The investor confidence goes low. So obviously India, as the governor rightly said, Mr. Malhotra said yesterday also, that India being a domestic, we are domestic economy, our consumption, we are a big consumer economy. So that is obviously, we are still, I would say, to a great extent, we are not impacted by the huge tariffs that he has imposed on us. Because it doesn't impact our own domestic consumption, but does it does impact the sentiment, the exports go down. But so I would say it is primarily because of that. So, and but yes, we are still continuing to be, we even if you look at the forecast given by the RBI for the next year also, the Q1 for the next year, yes, also, it is 6% plus. So despite these global headwinds, we, our own domestic parameters, if you look at the monsoons, have been good. The government has obviously been very proactive. As you said, income tax concessions were given at the, in the budget. Now the big the booster GST, has come, yes, from GST. So our macroeconomic, as you said, even the forex reserves is good. Inflation, the biggest, I would say the bright spot for us is because of the GST cut also is aiding inflation. So RBI has also revised the inflation target. So which gives them also a space to...
Ample space, yes.
Yeah, to, yes, probably in the December policy, they want to wait, because if you look at his the way he spoke yesterday, and the focus was that since August things have deteriorated. Obviously we have become a victim of US tariffs. So I think so the space to further cut interest rates is open, and they have given ample evidence of that. Even if I would say, even the two monetary policy committee external members also said, yes, that, yes, RBI should change the stance from neutral to accommodative.
Yes.
So I think, and he's given ample hint also, but probably they want to wait for more data and want to see and how things pan out in these next 2-3 months before going for a further interest rate cut. Because, and on the other side, what they have from their side has done, and he also amply exhibited that and said that also, that now the time is for monetary policy, fiscal policy, as well as the regulators and all other policy makers to work in a coordinated manner.
Tandem, yes.
And that is why they have now taken, I would say about last, yesterday there was an announcement of about almost 20, more than 20 announcements were there, and most of them were focused on how credit flow to the industry should be increased. No, sure. And not only industry, they've covered even markets. So I think, and how to further strengthen our banks.
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां कुल मिलाकर आज तेजी दिखी है. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.7% बढ़कर अपने सर्वकालीन स्तर 3549 पर बंद हुआ. इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़ी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी से यह तेजी मुख्य रूप से आई. सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 1.7% लाभ में रहा. हांगकांग में हेंगसेंग में 1.6% की वृद्धि हुई. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.9% ऊपर पहुंचकर बंद हुआ. उधर चीन में सार्वजनिक अवकाश के कारण कारोबार बंद रहा. यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार मिलने तक वहां भी प्रमुख बाजारों में तेजी दिख रही थी. अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 1.4% ऊपर कारोबार कर रहा था. फ्रांस के कैक 40 में 1.2% की वृद्धि थी, जबकि लंदन का फुटसी 100 मामूली बढ़त में दिख रहा था.
And moving on to the US markets, the Wall Street's major indices closed in the positive territory on Wednesday with the biggest boost from the healthcare sector. The tech-heavy Nasdaq Composite Index increased 0.4% to close at 22,755. The S&P 500 hit an all-time high in the intraday trade, gaining over 0.3% to end at 6,711, and the Dow Jones Industrial Average added 0.1% to end at 46,441. On the economic front, the metropolitan unemployment rate in August was at 4.5%, with the nominal change on year-on-year basis reported by the U.S. Bureau of Labor Statistics. Siddharth, if we look at the global markets, earlier we saw the Asian and the European markets, most of them were trading in the green. Even the U.S. market is today they are kind of showing green shoots now. So do you see the spillover effect coming into the Indian market as well in the coming times?
Nishit, very difficult to say, predict that. I think I expect markets to be basically range bound even in the coming days. I don't see a huge upside even in the Indian markets, basically because of the huge impact of the global situation. Despite all the efforts taken by the Indian government and different pillars of the government, be it RBI, be it the finance ministry, but I still see things would going forward, obviously, because this lot of disruptions are happening and new disruptions are happening every day. So that creates uncertainty in the investment for the investor as well as for general people at large. Yes, Indian markets are holding on, obviously, because we have now a very strong domestic participation. So that is what, just to give an example, post-COVID, I think now we have about 20 crore DMAT accounts, and we are seeing the new generation, the younger population coming into the market through different ways, through SIPs, through direct participation. So I think that is holding on the Indian market. But I think things need to settle down in the world before we see further another push to the Indian market.
And moving on to the GST story, the GST Bachat Utsav announced by Prime Minister Narendra Modi, which commenced on the 22nd of last month, is benefiting all sections of society. The next generation GST reforms represent a significant step towards simplifying India's indirect tax system. The reforms are bringing substantial relief to citizens by reducing the tax rate on various goods and services. Today, we are presenting a report on agricultural machinery and fertilizers. We have a report.
Under the next generation GST reforms, the government has reduced the GST to ease the financial burden on farmers, promote rural development, and make essential farm equipment more affordable. GST on farm equipment like sprinklers, drip irrigation system, harvesting machinery, and small diesel engines have been reduced to 5% from the earlier 12% tax slab. This will encourage water-saving irrigation, boost productivity, and support sustainable agriculture. Similarly, the tax on biopesticides and several micronutrients is also slashed down to 5%. Meanwhile, the GST on fertilizers such as ammonia, sulfuric acid, and nitric acid has also been reduced from 18% to 5%. This will make fertilizers affordable, encouraging farmers to use biopesticides, improving soil health and crop quality. The tax cut will lower cost for farmers and promote eco-friendly farming. Cheaper fertilizers and farm machine will boost productivity, making Indian agriculture stronger and self-reliant. Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत घटी है. पूरी खबर निश्चित से.
The global crude oil prices fell today, and the Brent crude was trading over 0.5% down at $65 per barrel, with the WTI crude, which was also trading over 0.5% down at $61.45 per barrel when reports last came in. The U.S. commercial crude inventories increased by 1.8 million barrels from the previous week at 416.5 million barrels. The U.S. crude oil inventories are about 4% below the five-year average for this time of the year. Total motor gasoline inventories increased by 4.1 million barrels from the last week. Siddharth, looking at the crude, and of course we are not looking at in isolation the geopolitical situation that we are seeing, and also the supply chain disruptions which can be envisaged now. How do you see the crude prices panning out in the coming days?
Again, Nishit, a very difficult question to answer, because as you see, I think it's also a lot of crude prices are also a lot of sentiment based. Yes, also depends on OPEC, how do they manage their output. But yes, looking at the current prices, very favorable for India, because we are one of the largest importers of oil. So I think very, very favorable. And since we are trying to push our own market through our own domestic steps taken by the government, so I think it aids manufacturing and obviously helps us keep our inflation low, brings down our cost of production. So it's a big plus for us.
यानी कुल मिलाकर हम ये देखें तो तेल के दाम वर्तमान जो चल रहे हैं हमारे अर्थनीति के लिए बेहतर है. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको सिद्धार्थ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
थैंक्स सिद्धार्थ. एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. गवर्नमेंट रिसीव इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन वर्थ ओवर 1,15,000 करोड़ रुपीज अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम. मेजर एशियन मार्केट्स क्लोज इन पॉजिटिव जोन. and global crude oil prices fall around 0.5%. That's all in this edition of Market Mantra from all of us here. Goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।